आज श्री सारंग ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में पढ़ के और फिर इस भावनात्मक पहलू पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री सारंग ठाकुर श्री चैतन्य रूप वृक्ष की एक महत्वपूर्ण शाखा श्री सारंग ठाकुर या सारंग मुरारी माम गाछी जगह है मोदद्रुम द्वीप में, तो मोदद्रुम द्वीप नवद्वीप में निवास करते थे। एक बकुल वृक्ष के नीचे रहते हुए सारंग ठाकुर अपने आराध्य श्री विग्रह को प्रसन्न रखने हेतु प्रतिदिन कठोर परिश्रम करते थे। अकेले ही वे फल सब्जियां तथा ईंधन एकत्र करते हैं, वे भिक्षाटन कर चावल लाते, भोजन पकाते, अपने भगवान को स्नान कराते, वस्त्राभूषित कराते करते तथा भोग अर्पण करते। दिन भर श्री विग्रह सेवा करने के उपरांत सारंग ठाकुर गंगा नदी पार कर महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होने मायापुर जाते। एक बार गौरांग महाप्रभु ने देखा कि सारंग ठाकुर का प्रिय बकुल वृक्ष सूखता जा रहा था और मृत प्राय हो गया है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सुंदर स्वर्णिम भुजाओं से इस वृक्ष का आलिंगन किया। पूर्णतया जीवंत होकर वह वृक्ष देखते ही देखते हरित पल्लवों तथा नूतन मधुर महामहिम सुमनों से लद गया, अर्थात सुंदर फूलों से, बेसिकली वह मधुर फूलों से। आज तक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्री धाम मायापुर में इस अनूप कल्प वृक्ष की पूजा करते हैं। हम अभी भी जाते हैं माम गाछी मोदद्रुम में, तो सारंग ठाकुर के घर के अवशेष है वहां पे, उनके विग्रह भी उनके विग्रह है वहां पे, वहीं पे कल्प वृक्ष भी उसकी परिक्रमा भी करते हैं। कतिपय भक्तजन नीचे गिरे छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़ों को एकत्र कर लेते हैं तथा उनसे कंठी माला बनाते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं। सारंग ठाकुर ने प्रण किया था कि वे कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देंगे, किंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे आग्रह करते रहते थे। एक दिन दयार्द होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें जो भी पहला व्यक्ति दिखेगा वे उसे दीक्षा दे देंगे। गंगा स्नान करते हुए एक प्रवाहित शव उनका स्पर्श करते हुए निकल गया, सहसा वह जीवित हो उठा। स्तंभित हुए उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया तथा सारंग ठाकुर को प्रणाम किया, जिन्होंने अभी अभी चामत्कारिक रूप से उसे पुनर्जीवन प्रदान किया था। उसे मंत्र दीक्षा देने के पश्चात सारंग ठाकुर सारंग मुरारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उस शिष्य का पूर्व नाम मुरारी था। ब्रज लीला में सारंग ठाकुर नंदीमुखी सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा करते हैं। नवद्वीप से रिक्शा से में लगभग 45 मिनट यात्रा कर आज भी सारंग ठाकुर के अज्ञा विग्रह एवं बकुल कल्प से दर्शन किए जा सकते हैं। श्री सारंग ठाकुर त्रिवतरी महोत्सव की, श्री सारंग ठाकुर की। तो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट, श्लोक संख्या 42। काशेम निज पर यह कियान वार्ता स्वापर द्रोह्य धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परसीम पीड़या च तथा धर्मः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ऐसा धर्म जिससे अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न होता है किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है? ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा? आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को तथा अन्यों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। तात्पर्य, भागवत धर्म के अतिरिक्त सभी धर्म, ये काफी लंबा तात्पर्य है, आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। भागवत धर्म के अतिरिक्त सभी धर्म अपने तथा अन्यों के प्रति द्वेष के कारण बनते हैं। उदाहरणार्थ, ऐसे अनेक धर्म हैं जिनमें पशुवध किया जाता है, कर्ता तथा पशु दोनों के लिए वध अहितकारक है। यद्यपि कभी कभी देवी काली के समक्ष पशु की बलि चढ़ाकर देवी के ही समक्ष पशु का मांस खाने की आज्ञा दी जाती है, किंतु यह आज्ञा श्री भगवान की आज्ञा नहीं होती। यह तो उस बेचारे पुरुष के ऊपर दया मात्र है जो मांस खाना नहीं त्याग पाता। यह तो असंयमित रूप से मांस खाते रहने पर अंकुश है। ऐसा धर्म अधर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। धर्म में यही अंतिम शब्द है। कोई कोई यह तर्क कर सकते हैं कि वेदों में तो पशु बलि की संस्तुति की गई है, किंतु यह संस्तुति एक प्रकार से प्रतिबंध है। मांस की खरीद पर वेदों द्वारा प्रतिबंध न लगाए जाने से बाजारों में मांस की दुकानों में बढ़ोतरी होगी और कसाई घरों में वृद्धि होगी। इस पर प्रतिबंध के हेतु कभी कभी वेदों में कहा गया है कि देवी काली के समक्ष बकरा जैसा तुच्छ पशु का वध करके उसका मांस खाया जा सकता है। चाहे जो भी धर्म हो जिसमें पशु यज्ञ की अनुमति दी जाती है, वह यज्ञ करता तथा पशु दोनों के लिए ही अशुभ है। भगवद गीता 16.17 में ऐसे द्वेषित पुरुषों की भर्त्सना की गई है जो पशु यज्ञ करते हैं। आत्मसंभाविता शब्दा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञ दम्भेन अविधिपूर्वकम्। वे अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवहार करने वाले, धन तथा मान के मद से अंधे असुर शास्त्र विधि का पालन किए बिना ही नाम के लिए यज्ञ करते हैं। कभी कभी देवी काली की पूजा के लिए भव्य आयोजन करके पशु यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, किंतु ऐसे उत्सव भले ही यज्ञ कहकर किए जाएं, वास्तव में यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान को प्रसन्न करना। इसीलिए इस युग में विशेष रूप से यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसः। जिनकी विमल बुद्धि है उन्हें यज्ञ पुरुष विष्णु को हरे कृष्ण महामंत्र के जप से तुष्ट करना चाहिए, किंतु श्री भगवान द्वारा द्वेषपूर्ण व्यक्तियों की भर्त्सना की जाती है। जैसे 16.18-19 में भी अहंकारम बलम दर्पम क्रोधम च संश्रितः मामात्म पर देहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयका तानहं दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्र अजस्रम शुभान आसुरेश्वेव योनिषु। जो असुर अहंकार बल घमंड काम तथा क्रोध में मोहग्रस्त होकर ऐसे श्री भगवान से द्वेष करता है, जो अपने तथा अन्यों के शरीरों में स्थित है और इस प्रकार असली धर्म की निंदा करता है, जो द्वेषपूर्ण तथा दुराचारी है और जो मनुष्यों में अधम है, उन्हें मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में डालता हूं। भगवान ऐसे पुरुषों की भर्त्सना करते हैं, जैसा कि तब कोपह इसमें लिखा है शब्दों से प्रकट है। हत्या करने वाला पुरुष अपने आप से तथा मारे गए व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसे पकड़े जाने और शूली पर चढ़ाए जाने का भय बना रहता है। भले ही कोई मनुष्य निर्मित राज्य के नियमों की अवज्ञा करके मृत्युदंड से अपने को बचा ले, किंतु वह ईश्वरीय नियमों से नहीं बच सकता। किसी भी पशु का हंता अगले जीवन में उसी पशु द्वारा मारे जाएगा, यही प्रकृति का नियम है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि कोई अन्य धर्म का पालन करता है तो श्री भगवान उसे अनेक प्रकार से दंडित करते हैं। इस प्रकार यदि कोई कल्पित धर्म का पालन करता है तो वह न केवल अन्यों के प्रति ईर्ष्या करता है, वरन अपने आप से भी करता है, अतः उसका धर्म बेकार है। श्रीमद् भागवतम का 1.1.2.8 कथन है धर्म स्वनुष्ठितापुंस विश्वक्सेन कथासुय न उत्पादये दयति रतिं श्रमये वहि केवलम्। यदि परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में अक्षम रहे तो चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा धर्म किया जाए, मैं निरर्थक श्रम के सदृश है। ऐसा धर्म जो कृष्ण भक्ति उत्पन्न न कर सके, समय तथा श्रम का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्ण। कह शेमो निज परियोग यान वार्थ स्वापर द्रुहा धर्मेण स्वद्रोहा तब कोपह परसीम पीड़याच तथा धर्म। ऐसा धर्म जिससे अपने तथा पराइयों में द्वेष उत्पन्न होता है, किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है? ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा? आत्मद्वेष के द्वारा अपने तथा अपने आप को तथा अन्यों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। तो महाराज चित्रकेतु यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसे पिछले से पिछले श्लोक में कह रहे थे कि किस प्रकार जो है भगवान जो कि अजित हैं वो जीते जा सकते हैं। किनके द्वारा जीते जा सकते हैं? जो भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करते हैं और भागवत धर्म की विधि का पालन करते हैं। और इस पिछले श्लोक में बताया गया कि भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म विरोधों से पूर्ण है, और कर्म फल की विचारधारा तथा मैं और तू और मेरा जैसे भेदभावों से पूर्ण है, श्रीमद् भागवत के अन्वय में ऐसी भावना नहीं रहती। तो इन दो श्लोकों के अंदर वो भागवत धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं और अन्य धर्मों की के फॉल्ट्स को या शॉर्टकमिंग्स को, उनके अंदर जो कमियां हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भागवत एवं सर्वश्रेष्ठ विधि है मनुष्य जीवन और अन्य और जो सभी मतलब एक जीवात्मा के को सर्वोच्च स्तर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार भागवत धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य के अंदर उदाहरण देते हैं कि लोग जो यज्ञों के नाम पे पशुवध करते हैं ऐसे करके, तो इस श्लोक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तात्पर्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि भागवत धर्म के अतिरिक्त सभी धर्म अपने तथा अन्यों के प्रति द्वेष के कारण बनते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। कई बार ये प्रश्न लोग उठाते हैं, डज रिलीजन कॉज वॉर, क्या धर्म जो है वो युद्ध कराते हैं। आजकल हम देखते हैं ना, पहले एक स्लोगन था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कुछ समय बाद किसने उसको चेंज कर दिया, बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब करते लड़ाई। तो कहने का अर्थ है कि जितने इस प्रकार से रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, वो यदि भागवत धर्म पे आधारित नहीं है तो सिर्फ व्यक्ति की भौतिक देहात्म बुद्धि को ही बढ़ाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो कि वो व्यक्ति की देहात्म चेतना को ही बढ़ाते हैं। उसके बाद वैसे ही बहुत सारे उपाधियां हैं, एक अन्य उपाधि और लग जाती है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ऐसा करके, जो अल्टीमेटली उसकी पहचान शरीर से ही कराता है। तो आज हमने सोचा प्रयास करेंगे इसके आगे। प्रभुपाद जी इस श्लोक को तात्पर्य में दो बार कोट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्ष यिष्यामि मा शुचः। और इसी से पैरेलल एक और श्लोक बोलते हैं कि इस कलयुग के अंदर हमें कौन सा यज्ञ करने चाहिए, वैसा यज्ञ नहीं जो पशु बलि देते हो, राधर वो यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र जप किया जाए, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। और अंत में प्रभुपाद जी वाला श्लोक कोट करते हैं भागवतम से, धर्म सुनिश्चिता पुंसन विश्वसेन कथा सुय न उत्पाद ये दिम श्रम एव ही केवलम, कि जो यदि परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में अक्षम रहे तो चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा धर्म किया जाए वे निरर्थक श्रम के सदृश है। कि हम कुछ भी पालन करें, तथा करें धर्म हो चाहे सच्चा धर्म हो, हम जो भी धार्मिक विधियों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं यदि वह भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं करता तो केवल श्रम एव ही केवलम। तो इस प्रकार से तो आज हम प्रयास करेंगे कि कुछ चर्चा करने का कि ये भागवत धर्म है क्या, भागवत धर्म क्या है, और दूसरा ये चीटिंग प्रोसेस ऑफ रिलीजन क्या है, अनेक प्रकार के जो कई तरह धर्म है वो क्या है, भागवत धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है, बाकियों को की भर्त्सना क्यों की गई है, बाकी जो अन्य धर्म है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद जो दूसरा श्लोक है भागवतम का, उसमें वर्णन आता है धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तुमत्र वस्तु शिवदम ताप त्रय उन्मूलनम। उसे बोल रहे हैं धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम। दो महत्वपूर्ण बातें इस पहले भागवतम के स्टार्टिंग में बताई गई है, धर्म प्रोजित कैतवत्रो, कैतव अर्थात चीटिंग, जितने अन्य चीटिंग प्रकार के रिलीजन है धर्म है, धर्म प्रोजित कैतवत्रो श्रीमद् भागवतम में क्या किया है, उनको झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया ऐसा करके, परमो निर्मत सरणाम सताम। और यह ग्रंथ है किसके लिए, निर्मत सरणाम सताम अर्थात जो कि मत्सर अर्थात ईर्ष्या द्वेष उनसे मुक्त हो, निर्मत सरणाम सताम ऐसे साधुओं के जो मत्सर ईर्ष्या से मुक्त है श्रीमद् भागवतम उनके लिए है। और यहां चित्र केतु महाराज बता रहे हैं कि कई प्रकार के धर्म हैं जो लोगों में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करते हैं, ऐसे धर्मों की वो निंदा कर रहे हैं, सो कॉल्ड रिलीजन्स जो है विकार हैं। तो ये भागवत धर्म है क्या, श्रीमद् भागवतम के अंदर सूत गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी भागवत धर्म 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 द वे ऑफ ट्रांसेंडेंस, तो उस पुस्तक का पहला श्लोक प्रभुपाद यहां से लेकर आखिर के 15 श्लोकों के ऊपर टीका लिखते हैं, एक भागवत में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के छठे श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक। तो उसका पहला श्लोक इस प्रकार से बहुत फेमस है, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो उसमें बताया है सवै पुंसाम परो धर्म, कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जो भगवान के अनन्य भक्ति की अहेतुकी अप्रतिहता, दो इस दो भक्ति को जो इंगित करता है, जो अहेतु की हो और अप्रतिहता भक्ति, यात्मा सुप्रसिद्धति। और वहां पे असली जो परम धर्म है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम देखें तो मनुष्य समाज के अंदर तीन प्रकार से हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं। अधिकांश लोग जो हैं आधुनिक सभ्यता के अंदर वो हैं अधर्म का पालन करने वाले, इनमें कोई धर्म नहीं है, एथिस्टिक पीपल जैसे करके अधर्म। उसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत लोग हैं इस समय संसार में, नहीं तो अधिकांश वैदिक धर्म के वैदिक काल के दौरान अधिकांश लोग आते थे इस अपरा धर्म के अंदर, अधर्म उसके ऊपर अपरो धर्म अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है लेकिन कुछ कुछ धर्म है अर्थात जो बाह्य रिलीजन है, और उसके ऊपर क्या है परो धर्म, सवै पुंसाम परो धर्म अर्थात भागवत धर्म, जो वास्तव भगवान की शुद्ध भक्ति जिसे बोलते हैं वह है। और ये चाहे आधुनिक सभ्यता हो चाहे वैदिक सभ्यता हो, ये कैटेगरी हमेशा कम हुआ करती थी ऐसे करके, जो परो धर्म को के जिनका लक्ष्य होता था का जो पालन करते थे वो लोग हमेशा ही कम होते थे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर हम देखते हैं कि नारद मुनि व्यासदेव के पास आते हैं, व्यासदेव जी ने जो है सभी वैदिक साहित्यों की रचना की है, पुराणों की उपनिषदों की उनकी शाखाएं बांटनी है, वेदांत सूत्र की भी रचना कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हताश हो गए ऐसे करके। और तब वो सोचते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई, और वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चालू करते हैं। नारद मुनि आप पधारते हैं और उनको डांट लगाते हैं, बोले तुमने इतने सारे सो कॉल्ड साहित्य लिख तो दिए हैं लेकिन है ये किसके समान, कौओं के तीर्थस्थल के समान, तद्वाय सम तीर्थम ऐसे करके। क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या लिखा, अधिकांश कर्मकांड के बारे में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि कैसे धर्म किया जाए जिससे आपको धन प्राप्त हो, धन प्राप्त होगा विनती करोगे और जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आप मोक्ष प्राप्त करोगे। बोले ये मनुष्यों का लक्ष्य नहीं है, और कलयुग के लोग इस वैदिक रीतियों का कर्मकांड का पालन करके एलिवेट नहीं हो सकते। इनको तो कलयुग के लोग ऐसे हैं जैसे स्कूल के अंदर कुछ बच्चे होते हैं है ना, और 40 नंबर या 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, है कि नहीं? वैसे ऐसा नहीं बोला गया कि 40 मार्क्स ही लेके आओ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 मार्क्स भी नहीं लेके आ सकते, 33 मार्क्स भी लेके आ जितने भी, जय श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गौरतन विश्व प्रभुपाद की। तो जैसे स्कूल के अंदर है तो जो बच्चे होते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे 40 से कभी मतलब उनके नंबर आएंगे 30-35 से कम ऐसे करके, वो 60-70-80-90 छोड़ दीजिए। तो ऐसे बच्चों को भी क्या देते हैं, ग्रेस मार्क्स, कि पास हो जाए किस तरीके से, वो है कि नहीं? तो कलयुग के जीव ऐसी प्रकार से, सत्ययुग चला गया उनका कुछ नहीं हुआ, त्रेता युग चला गया कुछ नहीं हुआ, द्वापर युग चला गया कुछ नहीं हुआ, तो सब फेल होते होते कलयुग के अंदर आ गए, है कि नहीं? कलयुग के लोग उसी प्रकार से, उनको बहुत स्पेशल ग्रेस की आवश्यकता है। और वैसे भी यू नो भागवतम के पहले 10वें श्लोक के अंदर ही लिखा है, प्रायण अल्पा ईश्वर सभ्य कलो वस्में न्युगे जना मंदा सुमंद मते और मंद भाग्य, तथा कलयुग के लोगों के जो है स्तुति की गई है, वहां पे प्रशंसा की है, प्रायण अल्पा ईश्वर सभ्य कलो वस्में, की हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, आयु छोटी होगी, बहुत ढीले सुस्त होंगे, मंदा सुमंद मते बहुत मंद मते के होंगे, बुद्धि बहुत कम होगी, मंद भाग्य उनका फॉर्च्यून बहुत कम होगा, ही उपद्रुता और बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब होने वाले लोग होंगे। तो मतलब लोग तो बेचारे स्कूल भी क्या जा पाएंगे, फेल होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नहीं तो कलयुग के लोगों को बहुत स्पेशल ग्रेस की आवश्यकता है ऐसे करके। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। किस प्रकार से यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेध सह, कि सिलेबस भी छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा सिलेबस कर दिया ऐसे करके, 10% सिलेबस है और उसके बाद भी स्पेशल ग्रेस देना पड़ा है ऐसे करके, क्योंकि वो भी नहीं पास कर सकते। तो इसीलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट, इस प्रकार से हम बहुत भाग्यशाली हैं, हिज डिवाइन ग्रेस अभय जनार्दन भक्ति प्रभुपाद। तो हाँ, तो भागवत धर्म जो है उसका लक्ष्य बहुत महान है। चाहे कलयुग के जीव मतलब भाग्यशाली हैं या कुछ भी कह लीजिए उन्हें, लेकिन जो है हमारा लक्ष्य जो इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर है वो बहुत महान है, वो है भगवान कृष्ण की बिना भक्ति प्राप्त करना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ये। अनार्पित चरण चरात करुणा अवतीर्ण कलो, और उसका प्रोसेस क्या है? भागवत धर्म है क्या? इट इज बेस्ड ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द लॉर्ड, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करके भगवत प्रेम प्राप्त करना इस प्रकार से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके अंदर तीन प्रकार के ज्ञान है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज के अंदर संबंध ज्ञान कि मैं भगवान का दास हूं। हे चैतन्य महाप्रभु ने सातन गोस्वामी को दिया, जीवेर स्वरूप है तेरे कृष्ण दास, कि एक जीव क्या स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास है। ये भागवत धर्म की फाउंडेशन है। ऐसे करके वो स्टार्टिंग ही भागवत धर्म का जो फाउंडेशन है वो ये है जीव का स्वरूप क्या है, सीधा उसके सारी बॉडी रिकग्निशन के ऊपर उठा देता है। ऐसे करके अन्य जितने धर्म होंगे वो बोलेगा मैं हिंदू हूं, सिख हूं, इसलिए ईसाई हूं, मुस्लिम हूं, मैं इन भगवान की पूजा करता हूं, इन देवता की पूजा करता हूं, लेकिन इन सबके देखिए कभी भी उसके देहात में उसे चेतना ऊपर नहीं उठती, मैं और मेरा की भावना हमेशा रहती है। यही चित्र के क्षेत्रों के तो महाराज उसे प्रकट कर रहे हैं, इसके अंदर जो है प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो साउथ इंडिया में जाते हैं और वहां पे रामानंद राय से संवाद करते हैं, और रामानंद राय से महाप्रभु पूछते हैं, प्रभु कहे पड़ा श्लोक साधेर निर्णय, राय कह स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति हय। तो महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया कि आप जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में जो है शास्त्रों से कुछ श्लोक उद्धृत करो। तो रामानंद राय कहते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार अपना अपने स्वधर्म को पालन करने से व्यक्ति की जो कृष्ण सुप्त कृष्ण चेतना है वो जागृत हो जाती है। और फिर वो श्लोक कोट करते हैं विष्णु पुराण से, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेन परह पमान विष्णु राधे पंथा नान्य तत्तोष कारणम। और भागवतम का श्लोक भी प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, अथापुम मेदुदा श्रेष्ठ, कृष्ण गीता में कहते चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम, कि वर्णाश्रम का भी पालन करता है तो वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो पहला स्टेप ये बोलते हैं कि वर्णाश्रम का पालन करना। महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कहा राय कहा कृष्ण कामार्पण सर्वसाध्य सार। महाप्रभु कहते हैं बाह्य है। तो रामानंद राय कहते हैं कि ठीक है आप कर्म करो और अपने सारे जो रिजल्ट्स हैं कर्म योग उसको भगवान को ऑफर करो। और फिर वो श्लोक कोट करते हैं गीता से 9:27, यत करो शतशनासी यत जुह सदासी यत, अब जो कुछ भी करते हो भगवान को उसका फल अर्पण करो। महाप्रभु कहते हैं बाह्य। इसके आगे वो कहते हैं ठीक है कर्म क्यों, क्योंकि हमें कर्म करना पड़ेगा, फल मिलेगा, फल भगवान को देंगे। तो इसके अगला स्टेप जो है रामानंद राय बोलते हैं कि आप कर्म का ही त्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे पे मोक्ष। महाप्रभु बोलते हैं अहो भाई आगे कहा आर, ये भी बाह्य है। ऑफकोर्स प्रभुपाद तात्पर्य आगे भक्तिनाथ ठाकुर अपनी कमेंट्री के अंदर लिखते हैं क्यों महाप्रभु को बाह्य कह रहे हैं, कि केवल अपनी ड्यूटीज को छोड़ देना और अपने वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करना ये बाह्य है। तो इसके बाद पूछते हैं आगे क्या, तो बोले ज्ञान मिश्र भक्ति जो है ये श्रेष्ठ है कि, और उसमें श्लोक कोट करते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेश भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। गीता का श्लोक कोट करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं ये भी बाह्य है। फिर बोलते हैं अच्छा ज्ञान शून्य भक्ति, और महाप्रभु बोलते हैं हाँ ये ठीक है चलो आगे कहो आप कुछ कुछ ऐसे करके। और तब वो ब्रह्मा जी का श्लोक कोट करते हैं बहुत ही फेमस श्लोक, वो क्या कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता सादे सिता श्रुतिगताम तनुवा जितो कैसी तई त्रिलोक्या। तो ब्रह्मा जी दशवें स्कंद के 14वें अध्याय में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जिन भक्तों ने ज्ञाने प्रयासम सारे ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके नमंत एव आपको प्रणाम करते हैं आपको सरेंडर करते हैं जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, और जिनका जीवन जो है कहां लगा हुआ है वह आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि को श्रवण करने में अपने जीवन को उन्हें लगा रखा है स्थाने शिता श्रुति कथाम तनुवान मनोभीर, वो जहां पर भी स्थित है किसी वर्ण किसी भी आश्रम में श्रुति कथाम तनुवान मनोभीर अपने शरीर वाणी मन से जो है आपके वचनों को सुनने में, आपके दिव्य लीलाओं को, आपके दिव्य संदेश को सुनने में लड़ा रखे थे। ये प्राय शोच जितो पिछले स्त्री लोग क्या, तो ऐसे लोग हालांकि आप अजित हो आपको जीत सकते हैं। तो ये पिछले पिछले लोग चित्र के महाराज यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान जो अजित हैं वो जीते जा सकते हैं। तो यहां पर दामन राय यही बोलते हैं और महाप्रभु कहते हैं हाँ ये कुछ ठीक है, लेकिन आप कुछ और भी गहरा कह सकते हो। तो इसको बोलते हैं भागवत धर्म, विशेषकर भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। और चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविता मा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहेतु कीत्वहि, कि हमें किसी प्रकार के भौतिक आशाएं ना रखते हुए धनम जन्म सुंदरीम इत्यादि और केवल भगवान की सेवा करना, ये भागवत धर्म का लक्ष्य है। इस प्रकार से कि जो भागवत धर्म का पालन करते हैं उनका लक्ष्य यह होता है कि बिल्कुल निष्कपट रूप से भगवान की सेवा करके भगवत प्रेम प्राप्त करना। और ऐसे प्रेम से क्या होता है, कृष्ण जो कि अजित हैं वो भी जीते जा सकते हैं ऐसे करके। तो ये है भागवत धर्म। और इसका अभ्यास क्या है, मुख्यतः श्रवण और कीर्तन करना, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करके सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करना, श्रवण कीर्तन इत्यादि करके जो है। इसके आगे है भागवत में जो जिसको झाड़ू मार के निकाल दिया है वो क्या है, कैटव धर्म, चीटिंग प्रोसेस ऑफ रिलीजन। अनेक प्रकार के जो धर्म हैं, सो कॉल्ड धर्म, जो व्यक्ति को जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर नहीं लेके जाते हैं या फिर जीवन के अंतिम लक्ष्य से दिग्भ्रमित कर देते हैं, उन्हें पथ भ्रष्ट कर देते हैं। अर्थात जो भागवत धर्म नहीं है वो क्या है, कैटव धर्म है, और अधर्म भी नहीं है वो कैटव धर्म है। जो धर्म तो है लेकिन धर्म का अल्टीमेट लक्ष्य नहीं, श्रम एव ही केवलम है मोर ओर लेस, यदि बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे करके। अर्थात ऐसा कोई भी धर्म या मत या कल्ट जो कि व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति, भगवान के सेवक के रूप में वास्तविक स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं देता है और ऐसी विधि नहीं देता है जिससे वह भगवान का नित्य दास बनने की स्थिति को प्राप्त कर सके, ऐसे सारे धर्म क्या है, कैटव धर्म है ऐसे करके। और ऐसे लोगों का अभ्यास क्या होता है, वो अधिकांशतः हृदय की शुद्धिकरण पर ध्यान नहीं देते ज्यादा। उनका लक्ष्य होता है येन केन प्रकारेन, किसी भी प्रकार से आप क्या करो, कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन लोगों को अपने मत में ट्रांसफर करो ऐसे करके। हृदय का शुद्धिकरण हो नहीं हो लेकिन उनको ये होना चाहिए कि हाँ हम सब ईसाई हैं, हम सब हिंदू भाई हैं, हम सब ये हैं या वो हैं, इस प्रकार से उनका लक्ष्य ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। भागवत धर्म के अंदर और कैटव धर्म के अंदर ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। भागवत धर्म के जो भक्त हैं वो भी भगवान के का प्रचार करते हैं और अन्य सभी जीवात्माओं को भगवान की सेवा में जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनको जोड़ने का जो प्रयास होता है वो भगवत प्रेम पर आधारित होता है ऐसे करके, कि किस प्रकार कृष्ण की कृपा को अन्य सभी जीवात्माओं को बांटे। लेकिन जो दूसरे सो कॉल्ड धर्म होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है, अपने नंबर बढ़ाना, अधिकांशतः अपने वोटिंग पॉपुलेशन बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना, या इस धर्म के फॉलोअर ज्यादा है ये बढ़ाना। और उनके तरीके किसी प्रकार से हो सकते हैं, आप पैसे के बल पे, चाहे वो ताकत के बल पे, किसी प्रकार से लोगों को धर्म क्या बोलते हैं उसे, धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन कराइए ऐसे करके। जैसे हम देखते हैं कि जो इस्लाम का अधिक प्रचार कैसे हुआ था, दे यूज टू से इन वन हैंड देयर वॉज फोर्ड, अदर हैंड देयर वॉज कुरान, मतलब या तो कुरान को स्वीकार करो नहीं तो तलवार तैयार, या तो इस्लाम बन जाओ या फिर आपको हम शरीर से निकल जाओ कुल मिला के। इस प्रकार से ये अभी भी हम देखते हैं, पहले भी आपको जीसस क्राइस्ट के समय तो नहीं, अभी भी अधिकांश जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो किस प्रकार प्रचार करती हैं, पैसे के बल पे अधिकांशतः है कि नहीं, चाहे उनके उसके अंदर कोई नियम हो चाहे नहीं हो, लेकिन सो कॉल्ड ईसाई जरूर बन जाइए आप, मुस्लिम जरूर बन जाइए, ऐसे हिंदू धर्म में ही परिवर्तन हो सकता है, होता है, सिखिज्म इत्यादि, इन सब के अंदर अधिकांशतः इस प्रकार का लक्ष्य रहता है। हालांकि इन सब धर्मों के अधिकांश धर्मों के टीचिंग्स के अंदर भी भागवत धर्म छिपा हुआ है ऐसे करके, लेकिन समय क्योंकि वो अपने आप को ईसाई वो सब चाहे जीसस क्राइस्ट और सब बोलते रहे यू नो लव ऑफ गॉड इज अल्टीमेट गोल एंड ऑल ऑफ अस आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के संतान हैं और भगवान से प्रेम करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है छुप जाता है इस प्रकार से छुप गया है। ऐसे ही हम देखते हैं जिहाद इसे बोलते हैं कि नहीं इस्लाम के अंदर होली वॉर, तो और हम देखते हैं कि भारत के अंदर कितना अधिक होता है, चाहे वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हो चाहे वो राम जन्मभूमि हो चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो चाहे वाराणसी में शिवजी का काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सब जगह पे हम देखते हैं मंदिर के साथ में वो क्या बनाएंगे मस्जिद इस प्रकार से, एक बोलेंगे हम हिंदू है दूसरे बोलेंगे हम मुस्लिम है, और यहीं पर ही जो है चित्रकेतु महाराज जी कह रहे हैं ऐसा धर्म जिससे अपने तथा पराइयों में द्वेष उत्पन्न होता है किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। तो ट्रू रिलीजन डज नॉट कॉज वॉर, जो भागवत धर्म है इट नेवर कॉज वॉर, इट ओनली कॉज लव ऑफ गॉड हेड, जो भागवत धर्म है जो वास्तविक रिलीजन है वो वास्तविकता में केवल भगवत प्रेम और उनके सभी संतानों में प्रेम उत्पन्न करता है, जो हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो अन्योन्य धर्म है सो कॉल्ड प्रैक्टिसेस वो सब इस प्रकार के ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करते हैं जिनकी लड़ाई होती है इस प्रकार से। और ये आश्चर्य की बात है चित्रकेतु महाराज कितने समय पहले होंगे उस जमाने में भी इस प्रकार के धर्म थे, नहीं तो वो बोलते नहीं शायद, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे धर्मों की रचना कर रहे हैं इसका मतलब इस पर धर्म भी हुआ करते थे। और हम पढ़ते भी जब भगवान ऋषभ देव हुए उनके बाद में उन्हीं के प्रकार के एक ढोंगी ऋषभ देव उत्पन्न हुए जो जिन्होंने आगे जैनिज्म का प्रचार किया इस प्रकार से, है कि नहीं। तो चित्रकेतु महाराज ये बता रहे हैं कि ऐसे जो धर्म है कि इसको बोलते हैं कैटव धर्म, हिंदू सो कॉल्ड हिंदू धर्म के अंदर वेदों में तो सनातन धर्म का वर्णन किया गया है, हिंदू धर्म प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो सिंधु नदी थी ऐसे करके तो उस प्रकार उधर से उस पार के लोग सिंधु को हिंदू का उच्चारण सिंधु बोलते थे तो सिंधु का उच्चारण करवा सकते हिंदू धर्म बन गया इस प्रकार से। तो सो कॉल्ड हिंदू धर्म के अंदर भी एक प्रकार का बहुत प्रगाढ़ कैटव धर्म है, वह है अन्योन्य देवी देवताओं की उपासना करना डेमीगॉड वर्शिप ऐसे करके, ये भी अधिकांशतः कैटव धर्म है। हालांकि वैदिक साहित्य के अंदर दिया गया है और प्रभुपाद जी की चर्चा कर रहे हैं क्यों दिया गया है, बहुत ही धीरे धीरे व्यक्ति की सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए, कम से कम किसी को तो फॉलो करेगा। और यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदों में तो पशु बलि की संस्तुति की गई है, प्रभुपाद उदाहरण दिया जैसे काली देवी को पशु बलि की वो दिया गया है, तो ये आज्ञा भगवान की आज्ञा नहीं है प्रभुपाद कह रहे हैं, ये धर्म अधर्म है प्रभुपाद सीधे से लिख रहे हैं यहां पे, क्यों, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये उन लोगों के लिए छूट है जो एनीवेज मांसाहार करेंगे ही करेंगे, ताकि कसाई घर ना खुले ताकि स्लॉटर हाउसेस ना खुले, इसीलिए जो है ये क्या बोलते हैं ऐसे वेदों में बोला गया है कि आप अमावस्या की रात को देवी काली के सामने किसी भैंस या बकरे के बलि चढ़ा के उसको सात भाग बांट के आठवां भाग आपको ग्रहण कर लो, तो वो सोचेगा इतना परेशान क्यों होने के लिए, एक दिन मिलता है वो भी थोड़ा सा खाने को मिलता है छोड़ देता हूं इससे अच्छा, तो ये उसका लक्ष्य है वेदों के अंदर, इतना तपस्या करेगा और एनीवे वो कम से कम देवी काली को समर्पण कर रहा है तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो किसी को सबॉर्डिनेट होकर कर रहा है ऐसे करके, तो द प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन महत्वपूर्ण है इसके अंदर, किसी हायर अथॉरिटी के सामने झुक रहा है धीरे धीरे वो भगवान के सामने झुक पाएगा, उसके अंदर कुछ श्रद्धा है ऐसे करके। और ये वास्तविकता में वेदों में बताया कि ताकि सामूहिक रूप से कसाई घर ना खुले, तो आज भी वो लागू नहीं होता, आजकल तो हर सड़क सड़क में कसाई घर है ऐसे करके, तो ये तो अधर्म के पालक है, ये अपरो धर्म के भी नहीं है, जो आज समाज के अंदर वो केवल अधर्म है अपरो धर्म नहीं है ऐसा करके वो भी। तो ये प्रबल धारण दे रहे हैं, इसलिए वेदों के अंदर ये दिया गया है कि किसी बार देव देवताओं की पूजा करें। अभी आपको लिस्ट सुनाते हैं, आप वो लिस्ट सुन के जिन भक्तों को थोड़ी बहुत नींद आ रही है जाग जाएंगे आप। ये जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के अंदर, बहुत बड़ी लिस्ट दी है उन्होंने, पढ़ाते हैं उसके पढ़ते हैं उसके देखें। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, आप गिनते रहिएगा किसको जो चाहिए तो किसकी उपासना करें ऐसे करके, ठीक है ना, जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। निर्विशेष ब्रह्मा के लोगों को ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना के इच्छुक हो उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? स्वर्ग के राजा इंद्र की। जो संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। 3, जो सौभाग्य की आकांक्षा हो उसे दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। हो गया 4, जो शक्तिशाली बनना चाहता है उसे अग्नि की। जो धन की पूजा इच्छा करता है वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए। कोई महान वीर बनना चाहता है तो रुद्र अवतार की पूजा करनी चाहिए। जो अन्न की राशि चाहता है उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग लोक की कामना करता है उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्वदेव की। जो लोकप्रियता का इच्छुक हो साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु चाहता है उसे अश्विनी कुमारों की। जो पुष्ट शरीर चाहता है उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो नौकरी के स्थायित्व की कामना करता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक के निवासियों की पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता है उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की। जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है उसे शिवजी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। और कितने हो गए? कितने सारे हैं? तो ये भी आप देखिए वेदों के अंदर इस प्रकार से कर, ये तो भागवतम के अंदर दिया गया है। शिवदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसा करके आप इनकी उपासना कीजिए, वो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बता रहे हैं, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितृन यजेत रक्षा काम पुण्य जनान जनान ओज काम अमरुद्गणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास करें मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की या उनके भक्ति पूजा करे। और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो राज्य का इच्छुक हो मनुओं की पूजा करनी, शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो असुरों की। जो इंद्रदित्य चाहता है चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये बता रहे हैं भागवतम के अंदर। और इसके बाद में कंक्लूजन में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ठीक है, अकाम सर्व काम, कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम सारी इच्छाएं हैं या मोक्ष की इच्छा है, आप क्या करो? तीव्रेण भक्ति योगेन सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करो। सब मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, कह रहे मुझे मेरी भगवान परम पुरुष की पूजा करो। हाँ, अब देखिए अगला श्लोक जो है वो इससे महत्वपूर्ण है। एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवती यत लोभाव यद भागवत संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान की शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धि प्रद वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। तो ऐसे लोग देवता की उपासना कर रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं? केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से। तो भागवत धर्म का ये फाउंडेशन है, वो क्या फाउंडेशन है? शुद्ध भक्तों की संगति। उसके बिना आप जीवन का जो टॉप मोस्ट रिजल्ट कभी प्राप्त नहीं कर सकते, जो टॉप मोस्ट स्टेज है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और भागवत धर्म ऐसा जो है, जैसे मेरे को एक बात बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक टीवी इंटरव्यू में बुलाया गया, तो उन्होंने लगा खाली इंटरव्यू होगा, लेकिन जब वहां गए तो देखा कि एक ईसाई पादरी को जो वहां के पोप थे उनको बुलाया गया था, और उनके साथ उनको लगा कि शिष्य बुला के अभी डिबेट होगा ऐसे करके। तो इंटरव्यू ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी डू यू थिंक दैट द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट विल ऑल्सो गेट लव ऑफ गॉड हेट, जो ईसाई लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह की पूजा करते हैं उनको भगवते प्राप्त हो सकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं यस, वाई नॉट, निश्चित रूप से उनको जो जीसस क्राइस्ट उपासना करेंगे, जो उनको फॉलो करेंगे वास्तविकता में, उनके भगवते प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह भी एक गुरु हैं। जब उस ईसाई पादरी से पूछा क्या उनको भगवते प्राप्त हो सकता है जो ईसा मसीह की पूजा नहीं करते, ही सेड नो, क्राइस्ट इज द ओनली वे। उनसे पूछा गया कि क्या किसी और का भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, बोले नहीं, कि जो केवल ईसा मसीह के फॉलोअर्स की ही कोई भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, ऐसे करके। तो ऐसा होता है, देखिए ये वास्तविकता में जो वो कह रहे हैं ही इज एक्चुअली नॉट फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, ऐसे करके। ये जो अन्य प्रकार के धर्म है ना, वो उनके अंदर इसी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ऐसे करके हम देखते हैं. प्रभुपाद जी कहते थे वी आर द ट्रू क्रिश्चियंस. प्रभुपाद जी से कोई पूछा प्रभुपाद कहते तो जीसस के 10 कमांडमेंट्स है वो तो हम फॉलो करते हैं. ऐसे करके द सो कॉल्ड क्रिश्चियन डू नॉट फॉलो. अभी एक जो रिसेंटली अभी जो जो क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े पादरी होते हैं पोप, अभी कुछ एक दो ढाई साल पहले ही उनका उन्होंने देहांत हुआ है. उनका जो जो फेवरेट पकवान था आपको मालूम है क्या था? जो उनका फेवरेट डिश क्या था? जो भेड़ का बच्चा होता है लैम्ब, एक विशेष प्रकार का भेड़ का बच्चा, उसका किसी उसका मांस जो था वो उनका फेवरेट डिश था. सोचिए जीसस क्राइस्ट ने बोला दाउ शुड नॉट किल. जो किसी धर्म के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का यदि ये आचरित्र होगा है कि नहीं, तो कैसे जो है उसको अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है? ऐसे ईर्ष्या देश उत्पन्न नहीं होगा. और तभी सोचिए, और ईर्ष्या कैसे बता रहे हैं कि प्रभात आगे बता रहे हैं कि जो दृष्टों की हत्या करता है, किसी और की हत्या करता है, वो अपने आप से द्वेष करता है और दूसरों से द्वेष करता है. जो दूसरों द्वेष करता है उन्हीं को तो मारेगा है कि नहीं, उन्हीं की हत्या करेगा और अपने जो है उधर को शमशान घाट बनाएगा ऐसे करके है कि नहीं. और अपने प्रति द्वेष कैसे करता है क्योंकि उसे मालूम है यदि मैं किसी की हत्या करता हूं तो मुझे जो है दंड प्राप्त होगा है कि नहीं. या तो इस समाज के अंदर यदि हम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए समाज से बच भी जाते हैं तो क्या होगा? भगवान के नियमों द्वारा तो नहीं बच पाएंगे, अगले जन्म के अंदर वही पशु हमें मारेंगे ऐसा करके. तो लेकिन जो भागवत धर्म है तो ये है कई तरह धर्म अनेक जो ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करते हैं लोगों के अंदर ऐसे करके. तो भागवत धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उनका प्रचार जो हम करते हैं. अब आप देखेंगे आप कहेंगे अरे प्रभु जी हम भी तो इतना प्रचार करते हैं गीता का, भी गीता मैराथन चल रहा है, तो क्या हम क्या कर रहे हैं? क्या हम भी केवल लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो है कि वॉलंटरी प्रोसेस है और दूसरी बात है कि दया पे आश्रित है. नहीं तो प्रभुपाद जी को क्या था कि हर क्षण मृत्यु के समय बिल्कुल सही छोड़ते हुए भी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दो हार्ट अटैक आने के बाद भी जो है वो आगे प्रचार कर रहे हैं. उन्हें क्या चाहिए था? सोचिए कड़कड़ाती सर्दी के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार कर रहे हैं जो है 70 वर्ष 80 75 वर्ष की उम्र के अंदर सब जगह जा रहे हैं. उनका अपना तो कुछ नहीं था है कि नहीं. तो वो भगवत प्रेम के ऊपर आधारित होता है ऐसे करके. लेकिन अन्य जो रिलीजियस सिस्टम्स हैं वो एक जीवात्मा का इस भौतिक जगत के अंदर जो केवल उसका जो समय है उसी को बढ़ाते हैं, केवल उसके ध्यान में चेतना बढ़ाते हैं. और उससे बड़ा नुकसान जो होता है वो अनेकों लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं. तभी नारद मुनि ने व्यासदेव को डांटा था कि आपने जो इतने देवी देवताओं की सब कर्म कांडों की जो रचना करी है इससे अधिकांश लोग क्या होंगे? सही मार्ग की ओर आके दिग्भ्रमित हो जाएंगे. उनको लगेगा जीवन का अंतिम लक्ष्य ही इसीलिए है. आप देखिए हमारे यहां इतने सारे मंदिर होते हैं भारत के अंदर, हम सब जानते हैं अधिकांश लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? बचपन से भी हमको क्या कंसेप्शन होता है? भगवान के पास जाओ आपकी जो मांगे हैं पूरी हो जाएंगी है कि नहीं. तो इसलिए होता है भगवान में जाते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का है कि नहीं. और ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर रहे हैं तो ये हो जाएगा. मैं कभी कल परसों ही हमने एक डिवोटी को बोला कि हम स्टूडेंट को प्रीचिंग करते थे तो हमने उनको बोला कि आप जो है गीता आप कुछ करो, अभी उनकी बहुत बड़ी जॉब है ऐसे करके. तो मैंने हमारे भक्त उनको बोला कि आप गीता जो है बांटो, आप स्पॉन्सर करो या आप खुद लेके बांटो उन्हें. तो बोला उन्होंने प्रभु जी एक्चुअली मेरी डिग्री के लिए जो है मेरे घर वालों ने जगह जगह बहुत सारी मन्नत मांगी थी ऐसे करके, कभी इस बाबा के यहाँ, कभी उन बाबा के यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, इन मंदिर में उस मंदिर में. तो भाई सारी तनख्वाह वहां पे उन मन्नतों को पूरी करने में जाती है ऐसे करके है कि नहीं. ऐसा होता है, सच्ची बात है कि लोग जो है यही होता है. इस कैतो धर्म का प्रॉब्लम यही है कि लोग यही सोचते हैं यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है बस ऐसे करके, है ना. प्रॉब्लम इसके बाद ये है ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सको, बट पीपल गेट स्टक अप ऐसे करके. तो हम जो इस्कॉन के अंदर प्रयास कर रहे हैं, हम किसका प्रयास कर रहे हैं? इस भागवत धर्म का, कैतव धर्म का? हम भागवत धर्म का, क्योंकि हमारा टारगेट कौन है? भगवान श्री कृष्ण. और हमारा प्रोसेस क्या है? शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन सर्विस. शिवराम महा ने पुस्तक लिखी शुद्ध भक्ति चिंतामणि. लेकिन शुद्ध भक्ति आसान नहीं है ऐसे करके, और ये पेड़ पे लटकती नहीं है ऐसे कि हम तोड़ के देने उसे. लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से ये हमारे पास बिल्कुल प्लेट में परोस करके हमें मिली है ऐसे करके. बस हमें इतना प्रयास करना है, उसका आस्वादन करना है ऐसे करके. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम खाते खाते सोचते हैं शायद दूसरी प्लेट में अच्छा प्रसाद, बस ऐसे करके. इसीलिए इस शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो हमें चाहिए वो चाहिए एब्जॉर्प्शन ऐसे करके श्रवण और कीर्तन के अंदर भगवान के नाम रूप गुणलीला के अंदर जो एब्जॉर्प्शन चाहिए और हृदय का शुद्धिकरण चाहिए ऐसे करके। तई प्रभावित नियम नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके सभी फॉलोअर्स के हृदय के अंदर शुद्धिकरण हो, क्योंकि एक शुद्ध भक्त उस चंद्रमा के समान है जो पूरे आकाश में रोशनी उत्पन्न करता है ऐसे करके, चाहे वो लाखों तारे मिलकर भी रोशनी नहीं कर सकते। उसी प्रकार से लाखों नियोफाइट डिवोटीज कह सकते हैं या इस प्रकार के जो चीटिंग रिलीजन के फॉलोअर्स है वो नहीं कर सकते, वो शुद्ध भक्त अपनी शुद्धता से कर सकता है। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने एक ही व्यक्ति थे लेकिन पूरे विश्व में वो जो है ला सके। तो प्रभुपाद यही चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स के अंदर इस भागवत विधि का सही प्रकार से पालन करके हृदय ट्रांसफॉर्म हो, और ऐसे शुद्ध भक्त जो प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव मास सेक्शन में, यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव मास के समान बनके मुझे भगवतधाम ले जाए तो मेरा इस्कॉन जो प्रचार करना है सार्थक हो जाएगा ऐसे करके, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है कि इस्कॉन के इस लक्ष्य को, इस्कॉन के भी दो लक्ष्य है, देखिए दो लक्ष्य कैसा है, एक है इंडिविजुअल सक्सेस व्यक्तिगत लक्ष्य और दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस अर्थात संस्था का लक्ष्य कह सकते हैं। तो संस्था का लक्ष्य तो हो सकता है कि अधिकाधिक लोग जो है भगवत धाम जुड़े भगवत भक्ति में जुड़े, और इंडिविजुअल लक्ष्य में क्या है कि एक दिन नई भगवान का भक्त बनूंगा, तत्र मूल्यमापि एकलम लौल्यम ऐसे करके कि एक दिन नई भक्त बने और कृष्ण प्रेम विकसित करना ऐसे करके। और उसकी इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आचार्यों के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट कठपुतली या एक माध्यम बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कृपा है, दे हैव कंपैशन। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं या गीता बांटने का या प्रचार करने का वो इसीलिए है कि भगवान की आचरण कृपा उनको हम दे सकें, प्राप्त करें, उनको बांट सकें। वी वॉन्ट टू बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिविंग कृष्णाज मर्सी ऐसे करके जो है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, जब हम एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर, तो बहुत बारी इस भागवत धर्म के अंदर बहुत अनेकों प्रकार के कैटव धर्म भी आ सकते हैं, चीटिंग प्रोसेस आ सकते हैं। हालांकि चीटिंग तो नहीं है लेकिन एक प्रकार के उसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खरपतवार उग सकते हैं, डाइल्यूशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं सेमब्लेंस ऑफ डिवोशन, भक्ति का आभास हो सकता है ऐसे करके। कैसे है एक्सटर्नल विजन क्या हो सकता है हमारे प्रचार का कि हाँ ठीक है मेरे को बहुत बड़ा फंड कलेक्टर बनना है, मेरे को नंबर वन बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ऐसे करके, या फिर मैं बहुत सारे मेंबर्स को बढ़ाना है इस्कॉन के अंदर, डोनर्स को बढ़ाना है। ये एक एक्सटर्नल विजन हो सकता है प्रचार का ऐसे करके कि हमें संस्था खड़ी करनी है ऐसे करके, ये एक एक्सटर्नल विजन है। हालांकि इसका भी फायदा है, नुकसान नहीं है कि किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि जो व्यक्ति बाह्य चेतना में है उनको यही आकर्षित करता है ऐसे करके। सो इट इज गुड, इट्स अ गुड वे टू एंगेज देम इन कृष्णा सर्विस, एक बहुत अच्छा माध्यम है भगवान की सेवा में उन्हें जोड़ने का। लेकिन जो आगे गहराई से जाना चाहते हैं उनको यहीं पर नहीं रुकना चाहिए ऐसे करके, है ना। इसके साथ क्या उसके साथ डेंजर क्या है, आप प्रचार करेंगे सफलता मिलेगी, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होंगे, तो धनम जनम सुंदरी सब आपको प्राप्त होगा यहां ऐसा करके, है कि नहीं। और आपको लगेगा कि भगवान के पास नहीं, अब मैं सबको अपनी कृपा बांटूंगा ऐसा करके। तो जब हम संस्था में रहते हैं तो हमें इन चीजों सतर्क रहना चाहिए इस प्रकार से कि हम फंस ना जाएं ऐसे करके इन प्रकार के चीटिंग रिलीजन विद इन इस्कॉन। यू नो मैंने लिखे कुछ धनम जनम सुंदरीम कविताम पोस्ट पोजिशन रिकॉग्निशन, अब इसमें देखते हैं हम लोग को पोस्ट पोजिशन मिलता है, कुछ समय बाद हम भी सीनियर डिवोटी बन जाते हैं, तो हमें उस चीज से बहुत केयरफुल रहना चाहिए ऐसे करके कि हम कृपा बांटते रहे और कृपा लेते रहे। एट एवरी डे वी शुड रिमेन प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हमें जब हर दिन प्रारंभ हो, जब हम जब करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, अध्ययन करें, तो हम एक नए भक्त के समान ही करें ऐसे करके। तब हम ये ना सोचें कि मैं बहुत महान हूं, मेरी ये पोस्ट है, मेरी पोजीशन है या मेरा ये है, उस समय जो है मैं कृष्ण का दास हूं, केवल इस उपाधि से हम भागवत धर्म की विधि का पालन करें ऐसे करके। नहीं तो हम भी इन उपाधि में फंस करके जो है हो सकता है कई तरह धर्म के अंदर फंस जाए ऐसे करके। तो प्रचार करें, जैसे हम देख रहे थे कई भक्त जो ऐसा करते हैं, सुबह जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, गीता वितरण के लिए जा रहे हैं, आप कृपा कीजिए, आपकी इच्छा हो उस प्रकार से हो और लोगों का भी कृपा प्राप्त हो सके, प्रभुपाद जी का संदेश प्राप्त हो सके, आपका संदेश प्राप्त हो। जब वो वापस आते हैं तो प्रार्थना करते हैं भगवान आज इतना इतना स्कोर हुआ, इस भक्त ने ये लिया जो है आपका स्कोर आपको अर्पण करते हैं लाइक दैट। और आज प्रभुपाद जी धन्यवाद देते हैं कि आपका आपके द्वारा लिखित गीता है, आपका आदेश है, आपका आदेश पूरा हो रहा है, आप ही हमें माध्यम बना रहे हैं। दैट्स अ वेरी वंडरफुल वे इस प्रकार से कि उनका माध्यम बनने के लिए ताकि हमारे जीव जो उनके हृदय में दया है वही दया हमारे हृदय में भी ट्रांसफर हो सके। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जिसके लिए आए उसी को हम आगे प्रदान कर सकें, यह है भागवत धर्म। नहीं तो क्या होगा कि धनम धनम कविता सुंदरी चक्कर में हमारे अंदर भी ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होगा, ऐसा करके ऐसा धर्म जैसे अपने तथा पराय में द्वेष उत्पन्न होता है किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें टॉप मोस्ट विधि प्राप्त हुई है, टॉप मोस्ट प्रोसेस प्राप्त हुआ है, टॉप मोस्ट संगत प्राप्त हुई है, टॉप मोस्ट फिलॉसफी प्राप्त हुई है, टॉप मोस्ट कल्चर प्राप्त हुआ है। इट शुड नॉट बी डायल्यूटेड बाय चीटिंग प्रोसेस ऑफ रिलीजन। अन्य प्रकार के मटेरियल कंसेप्ट से धर्म के ये डायल्यूट नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा भजन है कि गोद्रुम के लैंड पे, गोद्रुम में सुरभि कुंज में नित्यानंद प्रभु ने जो है, नित्यानंद प्रभु ने क्या खोला है, नाम हाट, एक बाजार खोला है जो है हरि नाम का। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, हे श्रद्धावान लोग, हे श्रद्धा के लोग, प्रभु आज्ञाए भाई मागी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हे भाइयों, भगवान एक ही, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश से आप एक ही मैं आदेश रिक्वेस्ट करता हूं, बोलो कृष्ण, भगवान का नाम लो, भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा और कृष्ण के आदेश का पालन करो। अपराध शून्य हो ये लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कि आप जो है अपराधों से शून्य होकर भगवान के कृष्ण का नाम भजन करो। कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही आपके जीवन के प्राण धन है। कृष्ण ने संसार करी छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, कि हर प्रकार के अनाचार को छोड़ के गिविंग अप ऑल इम्प्रॉपर बिहेवियर कोरी छाड़ी कृष्ण ने संसार, कैरी ऑन योर वर्ल्डली ड्यूटीज ओनली रिलेशन टू कृष्णा, कृष्ण के संबंध में ही अपने सारे संसारिक कर्तव्यों को कीजिए और अन्य प्रकार के जो अनाचार है उसको छोड़ दीजिए। और जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, सभी धर्मों का सार क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण करना और सभी जीवों पर दया दिखाना। नादी या गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नदी या गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नाम हट जीवर कारा, पाती आछे नाम हट जीवर कारा, नदी आगोद्रु में नित्यानंद महाजन, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य हो ये लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य हो ये लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार कर छाड़िया नाचार, कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार,
Jive Daya Krishna Nam Sarva Dharma Saham. Jive Daya Krishna Nam Sarva Dharma Saham. Nadiya Gudrume Nityananda Mahajan. Pati Ache Nam Hatta Jivera Karan. Nadiya Gudrume Nityananda Mahajan. Raya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram.
Shrimad Rasa Bhagavatam ki, Shri Bhagavat Dharma ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premana.